समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन, यानी रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। कचरे का प्रबंधन और पुनर्चक्रण पर्यावरण को साफ रखने और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कचरे के प्रबंधन में कचरे को अलग करना, छांटना, इकट्ठा करना और उसे पुनः उपयोग में लाना जरूरी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आजकल सुर्खियों में है और वर्तमान में बढ़ता हुआ ठोस कचरा चिंता का प्रमुख विषय है। पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग क्या है, इसके तरीके क्या हैं, क्यों आवश्यक है, कचरा प्रबंधन कैसे हो, इसी विषय पर विस्तार से चर्चा और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पांडे और पर्यावरणविद मुकुल सनवार। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। श्रोताओं, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो के फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 और 2323421050 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर सुनील, आपसे शुरू करें। जैसे हमने बोला कि रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट या कचरा कितने प्रकार का होता है? जैसे हम जैविक भी बोलते हैं, ठोस भी बोलते हैं और मेडिकल वगैरह भी होता है।
लवलीन जी, कचरा जो हम जनरेट करते हैं जी, तीन तरह का जो है हम घरों में जनरेट करते हैं। जैसे आपने बताया, ठोस जैविक कचरा, रिसाइकलेबल कचरा और कुछ जैसे ट्यूबलाइट हैं, बल्ब हैं, बैटरीज हैं, जिनको हम घरेलू खतरनाक अपशिष्ट बोलते हैं। तो ये तीन तरह के कचरे जनरली हम घरों में जनरेट करते हैं जी। इसके अलावा हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आपने बताया कि वहाँ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। फिर जो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करते हैं, टाइम टू टाइम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उससे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेट होता है। और उसके अलावा जो है प्लास्टिक की पन्नियां, प्लास्टिक
एक बहुत गंभीर चुनौती है,
जो बहुत गंभीर चुनौती
है। विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे और स्वास्थ्य पर्यावरण पे ये कितने घातक, कितने खतरनाक हैं, आपसे पूछेंगे सनवाल जी। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश से, इंदौर से अनिल कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो,
आवाज आ रही है?
हाँ, आ रही है आवाज। अनिल जी, सवाल पूछिए।
इंदौर से बात करते हैं। हमारा सवाल ये है, जैसे सूखा कचरा जिला कचरा अलग अलग किया जाता है, तो इसमें हमारे सफाई मित्र कर्मचारियों का काफी सफाई योगदान होता है और कई बार तो धीरे धीरे से काफी बीमारियां भी फैलती है, तो सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग कर रही है?
एक बार क्विकली फिर से पूछेंगे, जरा आवाज आपकी कट रही थी।
हमारा सवाल ये है कि जो हमारे सफाई मित्र कर्मचारी है, जिला कचरा सूखा कचरा अलग अलग दबाते हैं और रिसाइकलिंग के जब जाता है तब गीले कचरे से काफी मतलब बदबू भी मारती है और उसमें भी हमारे सफाई मित्र कर्मचारी इस काम को बड़ी सजगता से
समझ में आ गया। अनिल जी, आप कह रहे हैं कि जो कर्मचारी कचरा प्रबंधन में लगे हुए हैं, सरकार उनके स्वास्थ्य के लिए क्या जो है योजना चला प्रयास कर रही है, क्या योजनाएं हैं? तो इसमें एक तो ये है कि जो है उनको, क्योंकि कचरे में कई बार क्या होता है कि गीला कचरा खास करके थोड़ा सा जब सड़ने लगता है या बायोमेडिकल कचरा हमारा होता है तो उससे जो उनको हैंडल कर रहे हैं उनको बीमारियां हो सकती हैं, तो उनको समय समय पे वैक्सीनेशन करती है सरकार। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और दूसरे तरह के वैक्सीनेशंस करती रहती है, और उनको संक्रमण से बचाने के लिए कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आते हैं, मास्क है, गमबूट है, ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं, इस तरह के इक्विपमेंट को यूज करने के लिए उनको बताती है कि आप इनको इस्तेमाल करते रहें जिससे कि आप खुद संक्रमित
उनके सेहत पे जो ऐसा खतरनाक असर ना हो। धर्मवीर दिल्ली से जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए।
नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गंदनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मेरे दो सवाल हैं।
जी
पहला सवाल, जैसे दिल्ली में दो तीन पहाड़ बताते हैं कूड़े के, इनके लिए सरकार कितना टाइम और लेगी इनको हटाने के लिए, इनके लिए क्या आगे कार्य हो रहा है आपका? तो दूसरा सवाल ये है कि आम देखा जाता है, जैसे मैं गांधीनगर में रहता हूँ, हमारे नजदीक में एक शास्त्री नगर कॉलोनी है, तो वहाँ मेन रोड पे कबाड़ियों की बहुत सारी दुकानें हैं, वो क्या करते हैं गीजर फ्रिज एसी अदर आइटम जो भी है बैटरी, उसको सड़क पे लेके हथौड़ों में बजाते हैं, तोड़ते हैं वहां, तोड़ते हैं। आने जाने वाले को इसका दूषित प्रभाव कितना पड़ सकता है, इसके लिए सरकार क्या कुछ इन पे एक्शन लेती है कि नहीं लेती, क्योंकि ये सब गलत नाजायज तरीके से।
जी धर्मवीर जी, ठीक है,
धन्यवाद।
मुकुल जी, जैसे इन्होंने अभी पूछा कि जो लैंडफिल बने हुए हैं वो कितने खतरनाक है?
देखिए उसमें ऐसा है कि लैंडफिल जो है वो भी खतरनाक हैं, पर उनमें आप देखेंगे कि नया कचरा नहीं जा रहा है। ये जो समस्या है ये पुरानी समस्या है और उनका आकार भी घटता चला जा रहा है
जी।
क्योंकि अभी तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, तो समस्या बढ़ गई है और कुछ समय लगेगा। और जो आपने बैटरी की बात करी, तो आप देखेंगे कि दिल्ली में इस प्रकार के जो उद्योग थे छोटे छोटे, जहां मरकरी या लेड या इनका प्रयोग ज़्यादा होता था, उनको बंद करने की बात हो गई है
जी।
अब यह है कि जो मैन्युफैक्चर था, जहां उत्पादन होता था, वो तो शिफ्ट कर गया है, पर जैसे जैसे हमारे यहां बैटरी का प्रयोग बढ़ रहा है, टू व्हीलर आ रहे हैं, थ्री व्हीलर आ रहे हैं और बिजली की तरफ ट्रांसपोर्ट परिवर्तित हो रहा है, एक नई किस्म की समस्या भी सामने आ रही है। ये ट्रांसपोर्ट से ही संबंधित नहीं है। पहले जो रेडी ठेले वाले थे वो एक कोई पेट्रोमैक्स या कुछ इस तरह का रखते थे, अब सबके पास एक बैटरी का उपलब्ध, चाहे सोलर हो या बैटरी एलईडी लाइट का प्रबंध हो गया है, उसका भी कचरा कहीं जाना है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा। मुख्य बात यह है कि जब लोगों के अंदर ही यह बात एहसास हो जाएगी कि ये हमारे ही सेहत के लिए खराब है, तब परिवर्तन आएगा। शासन ने तो प्रबंध कर रखा है कि इस किस्म की चीजों को इधर उधर मत फेंको, एक नियमित जगह फेंको, पर टाइम लगता है। आप देखेंगे कि पहले भी कचौड़ी वाले बेचते थे तो उनको कहा गया कि भाई एक डस्टबिन अपने पास रख लो, नाली में मत डालो
जी।
ये परिवर्तन आ रहा है।
जागरूक होना बहुत जरूरी है और अपने कर्तव्य भी सबको समझने चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं फेंकेंगे तो काफी हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। ओडिशा से पद्मलोचन मोहंती कार्यक्रम में जुड़े हैं। हेलो,
हेलो, नमस्ते जी।
नमस्कार पद्मलोचन जी, सवाल
दोनों एक्सपर्ट को हमारा नमस्कार है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारा जो जल प्रदूषण में होता है, हमारा जो नदी नाल से जो प्लास्टिक जाते हैं वो तो समुद्र में रह जाते हैं, तो उनका आंकड़ा कितना, कितने टन में हमारा जो समुद्र में जो प्लास्टिक है? और दूसरा क्वेश्चन, जो एयर क्वालिटी होता है
जी,
वो एयर क्वालिटी कितने से अच्छा गुड और क्या बैड, और कितने एयर क्वालिटी को हम
पद्मलोचन जी, एयर इंडेक्स क्वालिटी की जो बात कर रहे हैं वो अक्सर हम न्यूज में और उसमें आपको बताते रहते कि कितना AQI है और कितना खतरनाक और अच्छा रहता है। फिलहाल डॉक्टर सुनील आपसे जो एक और सवाल पूछा है।
आपका सवाल प्लास्टिक कचरे के बारे में था और
नदियों में,
जैसा आपने कहा कि नदियों में चला जाता है और नदियां फाइनली ड्रेन होती हैं समुद्र में, तो वहां से फिर वो समुद्र में भी चला जाता है
जी।
और आपको मालूम है प्लास्टिक जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, और कई बार क्या होता है कि डिग्रेड तो होता है धीरे धीरे सूरज की रोशनी से, और मेनली सूरज की रोशनी से
जी।
और उसमें फिर क्या होता है कि जो है इसमें बहुत छोटे छोटे कण जनरेट होते हैं प्लास्टिक के, जिनको हम माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं। और ये जो है समुद्र में जब जीव जंतु जो होते हैं वो इनको खाना समझ के खा लेते हैं, और उनसे फिर उनके ऊपर दुष्प्रभाव होता है
जी।
और जो है अभी तो ये है कि ये माना जा रहा है कि सन 2050 तक जो है प्लास्टिक कचरा जो है वो समुद्र में जो जीव जंतु हैं उनसे भी ज्यादा कचरे की वो हो जाएगी वॉल्यूम, तो आप समझ सकते हैं कितना सीरियस प्रॉब्लम है ये
जी। महाराष्ट्र सोलापुर से प्रकाश राउत का एक सवाल है। हेलो,
मैं सर सो एक सवाल पूछता हूँ
जी
कि मैं प्लास्टिक और प्लास्टिक में कोई नहीं वापर करता हूँ, अतिशय गंभीर विषय सीरियस विषय लिए आकाशवाणी ने, धन्यवाद देता हूँ। और मेरा सवाल यह है कि हर शहरों में कचरों का जो ढेर लगता है वो नष्ट कैसा करना चाहिए और प्लास्टिक पर कड़ी पाबंदी लगानी चाहिए
जी। जो मुकुल,
देखिए आपने बहुत अहम बात की है, पर इसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये देखा गया है कि करीब 30 मिलियन टन प्लास्टिक या कचरा जनरेट होता है औसतन बड़े शहरों में
जी,
और 3 मिलियन लोग इस काम को कर रहे हैं। ये भी देखा गया है कि पिछले 10 साल में 15% से बढ़कर करीब 60-70% अब कचरा हम प्लास्टिक हम अलग कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं, छाट लेते हैं ताकि ये कहीं बाहर ना जाए
जी।
तो ये एक परिवर्तन आया है, समय लगेगा, पर इसमें यह है कि जिसको हम अंग्रेजी में रैग पिकर कहते हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले किसी ने सवाल पूछा था कि उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, वो इन चीजों को बीन लेते हैं और इस प्लास्टिक को अलग करके इसका प्रयोग फिर होता है, रिसाइकल जिसको हम कहते हैं इसका प्रयोग होता है। और आगे चल के कई उद्योगों ने इसको मान लिया है कि इस रिसाइकल प्लास्टिक को ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो एक परिवर्तन आ रहा है। दूसरा परिवर्तन ये आ रहा है कि कई जगह ये कहा गया है कि रिसाइकलेबल प्लास्टिक के ही थैले इस्तेमाल करो। अब समस्या यहाँ ये है कि शाम को लोग घर जाते हैं, दो चार सब्जी या एक आध फल खरीद लेते हैं रात में खाने के लिए
जी।
ना उनके पास रेफ्रिजरेटर की सुविधा है, ना अन्य साधन है, वो रोज खरीदते हैं खाते हैं, तो उनके लिए प्लास्टिक की जरूरी एक बैग का जरूरत पड़ जाती है
जी।
तो इन समस्याओं को देखते हुए ये कहा गया कि जूट के बैग लगाओ, पर वो महंगे पड़ते थे, पर एक परिवर्तन आ रहा है कि अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से गांव के तालाबों में प्लास्टिक फेंका जाता था वो अब नहीं फेंका जा रहा है, क्योंकि गांव के तालाब जो है वो उसकी वजह से नष्ट होते जा रहे थे
जी।
तो जब ये समस्या आएगी, लोग उसके साथ लिंक करेंगे, अवेयरनेस की बात आई थी कि ये हमारे ही लिए उपयोगी नहीं है
जी, खतरनाक है, राजा
खतरनाक है, तो वो परिवर्तन आएगा। और आप भी अगर देखेंगे, आप भी देखेंगे पिछले 8-10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है
जी। बिहार मुजफ्फरपुर से अशोक भारती कार्यक्रम से जुड़े हैं जी। अशोक जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
सवाल ये है मैडम
जी
कि पूरे देश भर में जो छोटे शहर है, खास तौर पर जहाँ नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है और कुछ नगर निगम वाले शहर भी हैं, तो उसमें हर जगह मैं देखता हूँ, कई शहर घूमता हूँ, कि एक निर्धारित स्थान है जहाँ पर कि मोहल्ले वाले दुकान वाले सब आके वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं, कई दिनों तक कई घंटों तक वो पड़ा रहता है। तो दुर्गा प्रसाद चौधरी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान बहुत पुराना है, वो मेरे पिताजी के नाम से स्थापित था, वो भी मैं चला रहा हूँ, वहाँ हमने गार्बेज लिफ्टर मशीन का हमने डेवलप किया है, आविष्कार किया है कहा जाए या डेवलप किया है, तो अगर कोई अधिकारी चाहे उस मशीन का मॉडल देखना तो वो देखेंगे कि किस तरह से ड्रम में ऑटोमेटिक वो मशीन से चला जाता है, जैसे आप रखेंगे वो उसमें डाला जा सकता है।
अशोक जी सवाल भी
बाहर से कोई दुर्गंध नहीं आएगा, तो इससे काफी सेहत पर अच्छा असर पड़ सकता है, लेकिन ड्यू टू सपोर्ट एंड लैक ऑफ हमारे देश में ही है कि कोई अच्छे काम का अगर कोई प्रश्रय मिले, सपोर्ट मिले, तो मैं इसका प्रदर्शन दिल्ली में भी आके कर सकता हूँ।
एक अच्छी शुरुआत अशोक भारती जी ने की हुई है, लोगों को फॉलो करना चाहिए उसे।
बिल्कुल
नहीं, आप सबसे पहले तो आपके आसपास के जो छोटे शहर हैं
जी,
उस विकास खंड के अंदर, तालुक के अंदर या जिले के अंदर, वहाँ इस बात को फैलाएंगे तभी एक जागरूकता बढ़ेगी और उसी की वजह से आपका ये आविष्कार जो है ये आगे भी बढ़ सकता है।
देखिए इस कार्यक्रम के जरिए भी काफी लोगों को पता चलेगा और जब लोग देखेंगे समझेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो प्रयोग है वो आगे भी चले। इसके अलावा क्या कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है मुकुल जी, जो कचरा प्रबंधन, निपटान और रिसाइकलिंग जैसे वैज्ञानिक तरीके से करे?
देखिए विदेश में तो टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखा गया है जब टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखेंगे तो एक अलग संस्था भी बनेगी। पर प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ लाइफ मिशन करके या ये कहके कि हम व्यक्तिगत रूप से इसमें परिवर्तन करें, उसको आगे बढ़ाया है
जी,
ताकि हर मोहल्ले में हर घर में इस बात को बढ़ाएं और वेस्ट की मात्रा को कम करें
जी। तभी तो, वो सीखा
तभी वो, क्योंकि अगर हम मात्रा को कम नहीं करेंगे, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, ये समस्या का हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आबादी ज्यादा है हमारी
जी।
तो इसलिए हमको इस बात को देखना है कि शासन ने इसको केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं पर व्यक्तिगत रूप से लोगों को इस पर साझेदारी बनाई है कि वो इसका परिवर्तन करें।
बिहार दरभंगा से मोहन पासवान जी कार्यक्रम से जुड़े हैं। जी मोहन जी।
जी सर, जय हिंद।
जय हिंद।
प्रणाम
जी।
महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लोग की टीम को और देशवासी सभी को जय हिंद करना चाहता हूँ। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रबंधन जो है उसमें कुछ निजी का पूरा कचरा का प्रबंधन, जिससे जुड़ा व्यक्ति हो उसके सुरक्षा के लिए उनको क्या करना चाहिए?
ये सवाल मोहन पासवान जी, ये सवाल सबसे पहले ही किसी ने पूछा था कि जो कूड़ा उठाते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए क्या विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। अभी बात कर रहे थे हम डॉक्टर सुनील की, सोसाइटीज और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आवश्यक प्रबंध करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज हैं या स्लम्स हैं, वहां पर किस तरीके के जागरूकता लानी चाहिए या क्या प्रयास करने चाहिए?
पहले तो जैसा अब हमारे साथी मुकुल जी बता रहे थे कि जितना कम से कम कचरा हम जनरेट करें उतना जो है कम प्रबंधन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये मतलब वो बताना चाहिए
जी
कि कम कचरा वो करें, और वहाँ पे फिर सरकार को जो है एक्टिव रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके पास अपना पर्सनल कैपेसिटी नहीं होता है कि वो दो बिन रखें या जो है तीन बिन रखें जैसा हमारा रूल बताता है। तो सरकार को उनको जागरूक करना होगा, सरकार को उनको प्रबंधन करना पड़ेगा। और शहर में जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेज हैं, औद्योगिक के वो हैं
जी,
उनको सपोर्ट करना पड़ेगा उनके CSR फंडिंग के थ्रू, कि कैसे वो अडॉप्ट कर सके इनको, स्लम्स को और झुग्गियों को, झोपड़ियों को, जिससे वो बेहतर कचरा प्रबंधन व्यवस्था वहां स्थापित कर सके।
मुंडका दिल्ली से शिवराम सिंह का सवाल है।
जी नमस्कार।
नमस्कार, सवाल पूछिए।
मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जो प्लास्टिक की बात चलती है
जी,
जो प्लास्टिक के माना कई सालों तक सड़ती नहीं गलती नहीं, तो उसको रोड में क्यों नहीं यूज किया जाता तारकोल के स्थान पर या इसमें मिक्स करके, जिससे कि काफी प्लास्टिक की खपत इसमें हो जाएगी।
ये प्रयोग शायद हुआ भी।
देखिए रिसाइकल की बात आप कर रहे हैं, रिसाइकल का प्रबंध तो कई तरीके से हो रहा है, सड़क पर भी प्रयोग होता है, उसको पिघलाकर उस पर नई प्लास्टिक बनाते हैं। आप देखेंगे कई बाल्टियां, मग, अन्य पदार्थ, ये सब रिसाइकल्ड प्लास्टिक से ही बने हुए हैं
जी।
और इसके लिए सरकार ने भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है ताकि ये नियमित रूप से बिके
जी।
तो प्रयोग चल रहा है, पर इसमें भी टेक्नोलॉजी के, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको एकत्रित करके एक संगठित रूप से कहीं उस पर ये टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उसको आकार बदलना होता है, उस पे अभी टाइम लगेगा।
डॉक्टर सुनील आप भी कुछ कह रहे थे।
आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अगर देखें जो रोड्स बना रही हैं वो देश में
जी,
वो ऑलरेडी हजारों टन प्लास्टिक कचरा जो है वो रोड बनाने में इस्तेमाल कर रही है, और हमारा जो नियम है ठोस कचरा प्रबंधन का वो भी यही कहता है कि जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता है उसको हम जहां तक हो सके रोड बनाने में इस्तेमाल कर ले। तो वो ऑलरेडी चल रहा है प्रयोग, और काफी सारा प्लास्टिक कचरा इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है
जी। इसके अलावा अगर ई वेस्ट की बात करें, वो भी आजकल बहुत एक दिक्कत कर रहा है, बड़ी मात्रा में एक प्रॉब्लम आ रही है इसकी। ई वेस्ट क्या वो पूरी तरह से रिसाइकिल हो सकता है? उस वेस्ट को नियंत्रित करने के लिए अपनी ओर से भी क्या हमें प्रयास करने चाहिए, और कैसे उस पर नियंत्रित किया जा सकता है? मुकुल जी,
एक तो ये है कि जो है हमारा कंजम्पशन पैटर्न है उसको हमको नियंत्रित करना पड़ेगा। हम जिस सामान की, जिस आर्टिकल की, जिस गुड की जरूरत हो वही खरीदें, और जितने हो सके उतना उसको इस्तेमाल करें
जी।
मतलब ये नहीं कि मॉडल बदल गया या टेक्नोलॉजी बदल गई,
मोबाइल बहुत जल्दी हम मोबाइल चेंज कर
बहुत
लेते
जल्दी
हैं,
छह महीने साल भर में हम सोचते हैं कि चेंज कर लें
जी।
तो जितना हो सकता है उतना इस्तेमाल करें तो उतनी देर से वो कचरा बनेगा
जी।
और दूसरा ये है कि जो है कंपनी जो बनाती है इनको वो इस तरह का डिजाइन मार्केट में लाएं जिनको ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल किया जा सके जब वो वेस्ट हो जाए
जी।
तो उसमें उस व्यवस्था में फिर जो है ई वेस्ट का जो है वो किया जा सकता है
जी। मुकुल
देखिए हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कहिए या हानिकारक हैं। तो इस तरह से भी हमको देखना होगा कि जितना जिस पदार्थ का उपयोग हो सकता है उसका उपयोग हो रहा है और जो हानिकारक पदार्थ हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने की जरूरत अवश्य है जैसे आप कह रहे थे
जी। जैसे 5R या 3R 4R आजकल जो होता है रिफ्यूज करना, रिड्यूस करना, रीयूज करना, रिसाइकिल करना, ये भी शायद हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी
जी हाँ, क्योंकि जब तक हम वेस्ट का जनरेशन को कम नहीं करेंगे, उसकी मात्रा को कम नहीं करेंगे, तब तक हम इस बात में इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पाएंगे। अभी बात आई थी कि छोटे शहरों में प्रॉब्लम बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि वहाँ आबादी बढ़ रही है
जी। मध्य प्रदेश मंदसौर से बसंती लाल सूर्यवंशी कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं।
हेलो नमस्कार जी।
नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए
जी। सर जी, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंतीलाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। मेरे दो तीन सवाल है सर जी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे गांव में अभी जैसे खाद गोबर खाद वगैरह में प्लास्टिक की तेलिया जैसे सामान लाते डाल देते तो गाय भैंस खा जाती है ना, तो उसमें नुकसान गाय भैंस को भी होता है और जैसे जलाते तो ईंधन वगैरह को नुकसान होता है, तो हम क्या प्रयास करें और सरकार क्या प्रयास है? और नदी नालियों में फेंकते तो किधर किधर पानी जाता है नदियों में, तो इसमें क्या हानि हो सकती है?
अभी आप देखेंगे तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जल संस्था वो है, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का जो रूरल एरिया का जो प्रोग्राम चलाया है
जी,
उसमें सारे गांव को विलेज पंचायत के थ्रू कचरा जो ये आपका प्लास्टिक पन्निया है इनको जमा करना और दूसरे तरह के जो है कचरे को जमा करना और उसको जो है कैसे जो है आगे भेजना रिसाइकिल होने के लिए, इसका प्रयास शुरू किया है। तो जल्द ही आप देखेंगे कि जो है आपके गांव में या आपके उसमें भी जो है इस तरह का मशीन, बेलिंग मशीन लगेगा और कचरा जो है जो आप अभी खाद में चला जाता है या पशुओं को खाने में चला जाता है वो थोड़ा सा हमको भी ध्यान देना होगा
जी।
कि इस तरह का कचरा हम उधर न डालें, लेकिन उसका प्रबंधन अभी जो है सरकार उसका प्रयास कर रही है।
मुकुल जी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि अब थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, जरूरत है जागरूकता की है उसकी, जो फिलहाल लैंडफिल है या कचरे के ढेर है किस तरीके से स्वास्थ्य को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
देखिए जब जैसे यहाँ दिल्ली में जो कचरे के ढेर हैं
जी,
उनमें गर्मी की वजह से आग भी लग जाती है, उसमें जो पदार्थ है उससे मीथेन गैस भी जनरेट होता है
जी।
तो हम बदबू को तो हम सूंघ लेते हैं पर जो अन्य गैस आती है वो हमको पता नहीं चलती है, पर उतनी ही हानिकारक है वो
जी।
तो धीरे धीरे आप देखेंगे इनको मात्रा कम की जा रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ इनको प्रोसेस कर दिया जाए, बहुत हाई टेम्परेचर में जला के इनकी मात्रा को कम करके इनको डिस्पोज किया जाए, जैसे अभी आपने कहा कि सड़कों पर नेशनल हाईवे में भी डाला जा सकता है। पर इसमें क्या है कि पुराना हिस्टोरिकल प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि इसमें समय लग रहा है, नया प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नई मात्रा ये इसमें मात्रा बढ़ नहीं रही है, पर पुरानी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसको कम करने में टाइम लग
समय लगेगा। दिल्ली से एनपी सिंह जुड़े हैं कार्यक्रम में। हेलो,
इसको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
नमस्कार एनपी सिंह जी,
मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जो फोटोशेड मशीन होती हैं या प्रिंटर्स होते हैं
जी,
वो जो वेस्टर्न कंट्रीज या ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये इंडिया में इसको डंप कर रही हैं, और इधर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी कि वो, हम जैसे दरियागंज दिल्ली के एरिया में है वहां पर कम से कम 100 शॉप्स खुल गई हैं और वहाँ ओपनली उसको रिसाइकल करने के लिए अंदर से गंदी सी काली शाही निकलती है, और वो ओपनली उसको साफ कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं एयर ब्लोअर के साथ. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है जो ई वेस्ट है, और इस तरह की ये मतलब बंद क्यों नहीं करते कि इधर फ्रेश चीजें बेची जाएं. अब इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री बन रहा है.
जी मुकुल जी,
देखिए इसमें दो समस्याएं हैं. एक तो समस्या ये है कि जो कार्ट्रिज है या जो शाही है, इंक है
जी,
उसको बार बार हमारे यहाँ भरा जाता है, उससे कुछ गंदगी होती है. जैसे आपने भी कहा नदी नालों में ब्लो करते हैं सफा करने के लिए, पर विदेश में उसको रिप्लेस करते हैं और रिप्लेसमेंट के बाद उसको कहीं फेंकते हैं
जी.
तो इस पर हमको विचार करना होगा कि शाही की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है या पूरी की पूरी कार्ट्रिज अगर हम रिप्लेस कर दें और उसको फेंकें तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी. आपका कहना सही है कि शाही की वजह से लोकल एरिया में प्रॉब्लम होती है, उसको फेंकेंगे तो एक पूरे क्षेत्र पे प्रॉब्लम होगा. दूसरा यह है कि फोटोस्टैट की आवश्यकता बहुत बढ़ती जा रही है
जी,
और नई मशीन महंगी पड़ती है. तो पुरानी मशीनें आ रही हैं पर ये काम करती हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रही हैं ठीक से
जी.
और इनकी रिपेयर करके लोग चला रहे हैं, इसकी वजह से एक रुपया पन्ना आप फोटोकॉपी के लिए दे सकते हैं. अगर केवल नई मशीन ही होगी तो इससे ज़्यादा चार्ज होगा. तो यहाँ एक बैलेंस की ज़रूरत पड़ रही है, संतुलन विकास की ज़रूरत पड़ रही है. हाँ, आवश्यकता इसकी है कि जो जिन इलाकों में ये मशीनें ज़्यादा लग गई हैं और एक के पास लगती जाती हैं, आप भी देखेंगे एक मशीन आएगी किसी जगह तो दो तीन और लग जाती हैं उसके पास, क्योंकि वहाँ लोग आते हैं इस काम के लिए, उनको मालूम है कि यहाँ ऐसी मशीन या ऐसी सुविधा मिलेगी
जी.
उस क्षेत्र में ज़रूर आवश्यकता है कि अवेयरनेस थोड़ा समझा के कि कोई ड्रम रख के कि जिस तरह से घर का कचरा फेंका जाता है उस कचरे को भी फेंकने की व्यवस्था की जानी चाहिए, और वातावरण उस क्षेत्र का वातावरण उसी जगह का वातावरण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. ये आपने जो बात कही है अहम बात है, पर एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसी तरह से इसका भी एक नया समाधान निकलेगा.
इसी बात को आगे बढ़ाएं तो हमारे घर का जो कचरा है हो सकता है वो किसी दूसरे के काम आए. ये जो छिलके विलके कहते हैं आजकल घरों में, कह रहे हैं कि उसको खाद बनाया जा सकता है, तो भी एक अच्छा प्रयास है. लोग काफी हद तक उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और काम में भी ला रहे हैं.
देखिए उसमें समस्या ये है कि जगह नहीं है घरों में. जिस घर में जगह, शहर के अंदर जगह नहीं मिलती है, जगह मिलती है किसी के पास बगीचा है
जी,
तो वहाँ वो उसका प्रबंध कर सकता है, वो डिब्बा रख के ताकि वहाँ कंपोस्टिंग उसकी कर ले. तो वैसे प्रयास तो ये है कि जितना हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, ये भी आत्मनिर्भरता की बात है कि हम अपना कचरा खुद ही प्रोसेस करें और छोटे बहुत जो पौधे लगाते हैं घर में उसमें उनका प्रयोग कर लें. तो ये धीरे धीरे जागरूकता आएगी, समस्या का समाधान निकलेगा.
चेन्नई से विनोद कुमार नायक कार्यक्रम में जुड़े हैं. जी विनोद जी नमस्कार, स्वागत है.
नमस्कार मैडम,
सवाल पूछिए.
सवाल ये है, जब जानकारी है कि प्लास्टिक हमारा पृथ्वी में जितना जीवन है सबका खतरा है प्लास्टिक, मैं यही चीज सुझाव देना चाहता हूँ कि हम लोग जो स्कूल में अगर बच्चे बच्चे से ये सब जानकारी दिया जाता है तो वो लोगों ने आके घर घर में माँ बाप को भी समझाते कि प्लास्टिक का खतरनाक कितना है, क्योंकि गवर्नमेंट कितना भी कुछ करेगा जब तक जन जन में होशियारी या जानकारी.
विनोद जी समय कम है, जल्दी से मुकुल जी से सवाल पूछते हैं. बहुत अच्छा,
आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जागरूकता के लिए या परिवर्तन के लिए बच्चों से ही और स्कूल से ही शुरू करना होगा
जी.
एक और मिसाल मैं देता हूँ आपको प्लास्टिक के अलावा. एक समय था जब कमरे के बाहर लोग निकलते थे, बुजुर्ग लोग, तो वो बत्ती बंद कर देते थे
जी,
लाइट स्विच ऑफ करते थे क्योंकि महंगा पड़ता था. अब हम नहीं करते हैं. तो इस तरह से हम पूरे पर्यावरण के संबंध में, प्लास्टिक ही नहीं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में भी, अगर हम इस तरह का प्रयास करते हैं, इस तरह का कार्यक्रम बनाते हैं शिक्षा के अंदर, तो अवश्य ही फायदा होगा
जी. अगर छोटे बच्चे ही यहाँ से सीख रहे हैं और घर जाके भी समझा रहे हैं तो इसका काफी लोग फायदा हो सकता है. इसके अलावा हम लापरवाही या अनजाने में भी प्लास्टिक के रैपर सड़कों पर फेंक देते हैं या घूमने गए वहीं पानी की बोतल फेंक दी, इस आदत पर काबू पाना भी बहुत जरूरी है. हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं मुकुल जी और डॉक्टर सुनील जी, जैसे अगर हम बाजार जा रहे हैं तो कपड़े का थैला ले लें, घर से पानी लेकर चलें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, बहुत छोटा छोटा योगदान लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक. लाभदायक हो सकता है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पांडे और पर्यावरणविद मुकुल सनवाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnstalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। फिलहाल नमस्कार, शुभरात्रि।